بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. دیکھو مجلس نمبر 24 ہی چل رہی ہے، مجاہدہ پر بات چل رہی تھی. اس میں ایک بات چل رہی تھی کہ ایک مجاہدہ تو واجب ہے، ضروری ہے، فرض کے درجے میں، اور ایک مجاہدہ جائز کاموں میں وہ مستحب ہے. اس میں چار چیزیں تھیں: کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اور کم لوگوں سے ملنا. اس میں کم کھانے کے بارے میں سب آ گیا تھا کہ آج اس میں ڈائٹنگ کی بات آ گئی تھی، انسان اپنے جسم سے وزن کو کم کرتے ہیں تو گناہوں کا وزن بڑھ گیا ہے، اس کو بھی کم کرنا چاہیے. جسم کے وزن بڑھنے سے تو فکر ہو گئی ہے، لیکن گناہوں کا وزن بڑھ گیا اس سے فکر نہیں ہوئی کہ میرا کیا ہوگا، اور اس کا وزن بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو جس طریقے سے جسم کے وزن کا بڑھنا یہ نقصان دے رہا ہے، تو ایسے ہی گناہوں کا وزن بڑھنا یہ بھی تو نقصان دے رہا ہے. جسم کے وزن بڑھنے سے انسان بدہ معلوم ہو رہا ہے، گناہوں کے وزن کے بڑھنے سے بھی بدہ اور خراب معلوم ہو رہا ہے. اس لیے ہمیں اس کی بھی فکر کرنی چاہیے. تو اس پر سب بات چل رہی تھی. اب کم بولنے پر بات شروع ہوئی تھی کہ کم بولنا بھی ایک مجاہدہ ہے. اس لیے انسان کو کم بولنے کا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے کہ بات کم کرے، زبان سے فضول بات نہ نکالے، ضرورت کے مطابق بات کرے، اور بولنے سے پہلے یہ سوچے کہ بات کرنا میرے لیے مناسب ہے یا نہیں، کہیں گناہ کی بات تو نہیں، اور بلا وجہ زبان چلانے سے بچیں. اس طرح آہستہ آہستہ انسان کم بولنے کا عادی ہو جاتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ بولنے کو دل چاہ رہا ہے لیکن اس نے اپنی اس خواہش کو دبا دیا، تو اس کے نتیجے میں زبان پر قابو پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جھوٹ، غیبت، اس طرح دوسرے گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتا. اچھا، یہ جو فضول قسم کی مجلس آرائیہ ہوتی ہے، یعنی ویسے ہی فضول قسم کی بیٹھک اور گیدرنگ، جس کو آج کل کی اصطلاح میں گپ شپ کہا جاتا ہے، ہے نا، گپ شپ بہت ہوتا ہے. یہ زیادہ تر دیہاتوں میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے، شہروں میں کم ہوتا ہے. تو گپ شپ کہا جاتا ہے، کوئی دوست مل گیا تو فوراً اسے کہا کہ آؤ ذرا بیٹھ کر گپ شپ کریں. یہ گپ شپ لازماً انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے. جی، ٹی پارٹی. جی، تو یہ گناہوں کی طرف لے جاتی. ہاں، شریعت نے ہمیں تھوڑی بہت تفریح کی بھی اجازت دی ہے، تھوڑی بہت تفریح، خوش رہنا، گھومنے کی اجازت دی ہے. نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی دلوں کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے آرام بھی دیا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قربان جائیے کہ ہمارے مزاج، ہماری نفسیات، ہماری ضروریات کو ان سے زیادہ پہچاننے والا اور کون ہوگا. وہ جانتے ہیں کہ اگر ان سے کہا گیا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کچھ نہ کرو، ہر وقت ذکر اللہ میں مشغول رہو، تو یہ ایسا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. ہر وقت اس میں رہو نہیں ہو سکے گا، نہیں کر سکیں گے. اس لیے کہ فرشتے نہیں ہیں، یہ تو انسان ہیں. ان کو تھوڑے سے آرام کی بھی ضرورت ہے اور تھوڑی سی تفریح کی بھی ضرورت ہے. اس لیے تفریح کے لیے کوئی بات کرنا، خوش طبعی کے ساتھ ہنس بول لینا، نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ پسندیدہ ہے. ہر وقت منہ چڑھا کے نہیں رہنا ہے. ایسا خوف غالب آ جاتا ہے کہ جب دیکھو تو منہ چڑھا ہوا ہے، تو نہیں. تو کبھی ہنسنا بھی ہے، اور ہنسی مذاق میں حدود ہے، ہنسی مذاق میں گپ شپ نہیں. گپ شپ بھی کرو لیکن اس میں غیبت نہ ہو، उसमें काम की बातें हो, माना रखता हो। जी तो वो चीजें हैं, इसलिए हंसी मजाक होना चाहिए। खुश तबीयत के साथ हंस बोल लेना न सिर्फ ये जायज है बल्कि पसंदीदा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप भी तो हंसे हैं, तो हंसना भी इबादत है। हमारा हंसना भी इबादत, हमारा रोना भी इबादत, कि हंसना भी सुन्नत है, रोना भी सुन्नत है। अभी बाजों ने सिर्फ रोने की सुन्नत याद रखी है तो हंसते ही नहीं। तो कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं तो मैंने कहा भाई जिस तरीके से तुम गमगीन फिर रहे हो वो भी इबादत है, तो जरा खुशहाल फिरना ये भी इबादत है। आपने ये सुन्नत नहीं देखी है, एक ही सुन्नत दिमाग में आ गई है, इसलिए पूरा पूरा दिन सीखना चाहिए। लेकिन उसमें ज्यादा मुनहमिक हो जाना कि उसी में कई कई घंटे बर्बाद हो रहे हो, हंसी मजाक में कीमती अवकात जाए हो रहे हो, तो ये चीज इंसान को लाजमी तौर पर गुनाह की तरफ ले जाने वाली चीज है। जी इसलिए फरमाया जा रहा है कि तुम बातें कम करने की आदत डालो, और ये भी मुजाहदा है। मेरे वालिद माजिद हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक साहब आया करते थे, एक साहब आया करते थे, वो बातें बहुत करते थे, बातें बहुत करते थे। जब कभी आते तो बस इधर उधर की बातें शुरू कर दे, और ऐसे बात पता नहीं ऐसे बाजे ऐसे बोलने वाले होते, बातें आती कहां से, मैं तो कभी भी सोचता हूं ऐसी बस एक सिलसिला चल पड़ता है और अजीबोगरीब चल रहे, तो बातें शुरू कर और रुकने का नाम न लेते। तो हमारे सब बुजुर्गों का ये तरीका रहा है कि अगर कोई शख्स मेहमान बनकर मिलने के लिए आता तो उसका इकराम करते, उसकी बात सुनते, मेहमान बनकर आया तो उसका इकराम भी करते, उसके बाद अपना कीमती वक्त छोड़कर मेहमान के साथ बैठकर बातें करते। क्यों? कि वो ये सोचते थे कि मेहमान के साथ बैठेंगे तो हमारा वक्त तो जाये होगा, लेकिन ये भी सुन्नत है, मेरे नबी बैठे हैं, तो अपना वो वक्त छोड़कर इनके साथ बैठते, इबादत। तो फरमाए उसके इकराम करते, उसकी बात सुनते, और हत्तल इम्कान उसकी तशफी की कोशिश करते। ये काम एक मसरूफ आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। एक आदमी जो बहुत मशगूल हो फिर उसके लिए मेहमान को वक्त देना बहुत मुश्किल है। जिन लोगों की जिंदगी मसरूफियात से भरी हुई हो वो जान सकते हैं कि कितना मुश्किल काम है। लेकिन हदीस शरीफ में आता है कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि जब आपसे कोई शख्स मिलने के लिए आता, आपका मामूल ये था कि जब आपसे कोई शख्स मिलने के लिए आता और आपसे बात करना शुरू करता तो आप उसकी तरफ से कभी मुंह नहीं मोड़ते थे। भाई ये कौन है अंदर बातें कर रहे हैं, प्लीज माइक म्यूट कर ले। कौन है भाई, उसको या तो खत्म निकालो, हाँ कट करो जल्दी से इसको, वो बात भी नहीं सुन रहे हैं, उनकी बातें चालू है, ऑन करके चले जाते हैं। जी शुसे। जी चलो अल्लाह का शुक्र है कि कौन था ये कौन था? जी मेहमान से बातें करना भी सुन्नत है, हत्तल इम्कान इसकी तशफी की कोशिश करते। ये काम एक मसरूफ आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। जिन लोगों की जिंदगी मसरूफियात से भरी हो वो जान सकते हैं कि कितना मुश्किल काम है। ये कितना मुश्किल काम है। लेकिन हदीस शरीफ में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि जब आपसे कोई शख्स मिलने के लिए आता और आपसे बात करना शुरू करता तो आप उसकी तरफ से कभी मुंह नहीं मोड़ते। जब तक वो खुद ही मुंह न मोड़ ले। उसके बाद सुनते रहते थे, चुनांचे हदीस के अल्फाज है, हत्ता यकूनु हुवल मुनसरिफ, यानी हत्ता कि वो खुद ही ना चला जाए, ऐसे आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते थे। ये काम बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि बाज लोग लंबी बात करने के आदी होते हैं, उनकी पूरी बात पूरी तवज्जो से सुनना एक मुश्किल काम है। बाजे लोग हैं ना वो, हाँ हाँ बोलो 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 बोलो, मैं सुन रहे हूं। तो वो जो होता है ना, ये सुन्नत के खिलाफ, जब कोई बात कर रहा है तो ध्यान से सारे कामों को छोड़कर बात को सुने, वरना अक्सर की आदत होती, हाँ हाँ तो वो क्या होता है, सुना ना सुना, ये तकबुरी की भी अलामत होती है। हमेशा पूरी बात तवज्जो के साथ, कोई भी हो, करने वाला छोटा हो बड़ा हो, तो ये तवाजु भी होती है और उसको खुशी भी होती है कि मेरी बात ध्यान से सुनी। बाज मरता बात बहुत अहम होती है, लेकिन हाँ हाँ उधर सुन के निकाल दिया। इसलिए सुनना चाहिए, सुन्नत है। हमारे बुजुर्गों के तरीका रहा है कि आने वाले की बात सुनते और उसकी तशफी करते, और हमसे तो ज्यादा वो मशगूल थे, उसके बावजूद वो सुनते, और फजूल बात कोई करता उसमें भी वो बैठते, मेहमान है। लेकिन हम तो काम की बात भी तवज्जो से नहीं सुनते। लेकिन अगर कोई शख्स इस्लाह की गरज से आता तो उस पर रोक टोक होती, तो उस पर कोई इस्लाह की गरज से आता, देखो एक मेहमान बनकर आना और एक इस्लाह की गरज से आना, दोनों के उसूल में फर्क है। मेहमान बनकर आएंगे तो मेहमान तकलीफ देगा तो मेजबान उठा लेगा, लेकिन अगर इस्लाह की गरज से आया है तो फिर तो उसको डांट टपट होगी, तो उस पर रोक टोक होती है। बहरहाल वो साहब आकर बातें शुरू कर देते, हजरत वाली साहब मिस्कीनियत से उसकी बातें सुनते रहे। एक दिन उन साहब ने आकर कहा, हजरत वाली साहब से बैत की दरखास्त की कि हजरत मैं आपसे बैत इस्लाही ताल्लुक कायम करना चाहता हूं, मेरे लिए कोई वजीफा कोई तस्बीह बता दीजिए। अब हजरत वाली साहब ने फरमाया कि तुम्हारे लिए कोई तस्बीह और वजीफा नहीं है, तुम्हारा काम यह है कि जबान को काबू में करो, उस पर ताला डालो, बस तुम्हारा यही वजीफा है। तुम जो बोलते थे ना, बस उस बंद कर दो। तुम जो हर वक्त बोलते रहते हो, जबान नहीं रुकती, ये गलत है। आइंदा जब आओ तो बिल्कुल खामोश बैठे रहो, जबान से कोई लफ्ज न निकालना, बस। तो अब बताओ फजूल बातें, अब देखो यहां जायज भी मना हो गया, क्यों कि वो यानी ज्यादा ना बोलो, थोड़ा बोलो। एक तो ये भी हो सकता, उनसे कहा कि नहीं कुछ भी मत बोलो, तो जायज काम को भी रोक दिया, क्यों कि इसलाह हो रही, तो वो मुड़ेगा ना वरक, जो बोलने की आदत है तो फिर कंट्रोल में आ जाएगा, पहले से कंट्रोल कहा तो बेकंट्रोल हो जाएगा। तो जबान को काबू में करो, उस पर ताला डालो, जो हर वक्त बोलते रहते हो, आइंदा जब आओ तो बिल्कुल खामोश बैठे रहो, जबान से कोई लफ्ज न निकालना। अब उस पाबंदी के नतीजे में उन साहब पर कयामत गुजर गई, ये खामोश बैठने का मुजाहिदा उनके लिए हजार मुजाहिदों से भारी था, क्यों बोलने वाले के लिए खामोश रहना मुजाहिदा और खामोशी वाले के लिए बोलना मुजाहिदा। उसे कहा कि भाई तुम्हें बोलना है तो अब उसके लिए वो मुजाहिदा। तो ये है कि मुजाहिदा हर एक अलग अलग होता है, मुजाह उनके लिए हजार मुजाहिदों से भारी था। अभी होता कि बार बार उनके दिल में बोलने का तकाजा पैदा होता, लेकिन पाबंदी की वजह से न बोलने पर मजबूर थे, और उसी इलाज की वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने सारा तरीक तय करा दिया, तरीक यानी रास्ता, पूरा सलूक तय करा दिया। इसलिए कि हजरत वालिद साहब ये समझ गए थे कि उनकी बुनियादी बीमारी ये है, जब ये काबू में आ जाएगी तो सब काम आसान हो जाएगा। चुनाचे कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। हर एक की बीमारी अलग अलग है, लिहाजा हालात को देखकर शेख इलाज तजवीज करता है कि इसके लिए कौन सा इलाज मुफीद होगा। बहरहाल ये कम बात करने का मुजाहदा, कम बोलने का मुजाहदा समझ में आ गया, अब कम बात करने का मुजाहदा भी समझ में आ गया, अब कम सोना। तीसरा मुजाहदा है कम सोना, यानी कम सोना, उसमें भी पहले तो न सोने का मुजाहदा होता था। चुनांचे जैसा कि मशहूर है, कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन बुजुर्गों ने फरमाया कि कम सोने की हद यह है कि आदमी को दिन रात में कम अज कम 6 घंटे जरूर सोना चाहिए, 6 घंटे से कम न करे वरना बीमार हो जाएगा। याद रखे 6 घंटे सोना चाहिए। हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर किसी को बेवक्त सोने की आदत है तो वो उसको खत्म करे, बेवक्त न सो, ये भी कम सोने की हद में दाखिल है और ये भी मुजाहदा है। तो सोने की बात ये होगी। चौथा है ताल्लुकात कम करना, इख्तलात माल अनाम, तकलील इख्तलात माल अनाम, यानी लोगों से मेल जोल कम करना, बहुत ज्यादा मेल जोल से परहेज करना, इसलिए कि इंसान के जितने ज्यादा ताल्लुकात होंगे उतना ही गुनाहों में मुब्तला होने का अंदेशा रहेगा। तजर्बा करके देख लो, देखो कम मिलना, उसमें रिश्तेदारियां नहीं तोड़नी है, मिलना कम करना। आज हम रोजाना कहीं ना कहीं मजलिस करते थे, बोले अब हफ्ते में एक मर्तबा जाएंगे बस, तो इसको कहते हैं कम मिलना। तजर्बा करके देख लो, आजकल तो ताल्लुकात बढ़ाना बाकायदा एक फन और हुनर बन गया है, फ्रेंडशिप एक हुनर और फन बन गया है, जिसको पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशन कहा जाता है, कि जिसका मकसद है कि लोगों के साथ ताल्लुकात ज्यादा पैदा करो और अपना असर और अपना रसूख बढ़ाओ, अपना असर बढ़ाओ और अपना रौब और अपना ताल्लुकात बढ़ाओ, उन ताल्लुकात की बुनियाद पर अपना काम निकालो। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने उससे मना फरमाया कि बिला जरूरत ताल्लुकात न बढ़ाए जाए बल्कि ताल्लुकात को कम किया जाए। इसलिए कि अल्लाह ताला ने इंसान के दिल को एक आईना बनाया है, जो तस्वीर इंसान के सामने से गुजरती है उसका अक्स दिल पर जम जाता है। ये आंखें कैमरा है और दिल उसके हार्ड डिस्क है, कि यहां आकर जम जाता है, वो चेहरा यहां पर आ जाता है, सेव हो जाता है जो भी आंखों के सामने से गुजरता है, तो उसका अक्स दिल पर जम जाता है। लिहाजा जब इंसान के ताल्लुक ज्यादा होंगे तो उसमें फिर अच्छे लोग भी आएंगे और बुरे लोग भी होंगे, सारी चीजें जमा होगी, और जब बुरे कामों में मसरूफ लोग मुलाकात करेंगे तो उनके कामों का अक्स दिल पर पड़ेगा और उससे दिल खराब होगा। इसलिए फरमाया कि दूसरे लोगों से बिला जरूरत ज्यादा न मिलो, दूसरे लोगों से ताल्लुकात जितने कम होंगे उतना ही अल्लाह जल्ल शानू से ताल्लुकात में इजाफा होगा। देखो जो अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना चाहता है, याद रखो उसको मखलूक से ताल्लुक कम करना होगा, हाँ पहले शुरू में, फिर बाद में तो उसका मखलूक से ताल्लुक कोई नुकसान नहीं देगा, ये सारा का सारा इब्तिदा में है। हाँ कि अल्लाह से ताल्लुक कम करो, अल्लाह का ताल्लुक जब मजबूत हो गया फिर मखलूक से कितना भी ताल्लुक रखोगे वो ताल्लुक तुम्हें कोई ताल्लुक ही नहीं होगा, मखलूक से रखते हुए भी तुम्हारा मखलूक से ताल्लुक टूटा हुआ है, फिर वो नीयतें बदल जाती है, इससे दिल खराब होगा। इसलिए फरमाया कि दूसरे लोगों से बिला जरूरत ज्यादा न मिलो, दूसरे लोगों से ताल्लुक का जितने कम होंगे उतना ही अल्लाह जल्ल शानहु से ताल्लुक में इजाफा होगा। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ताल्लुक हिजाबस्त व बेहासिली चुपेवंदा बकसली वासिली बकसली वासिली, यानी ये ताल्लुकात अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक कायम करने में हिजाब और पर्दे बन जाते हैं, और दुनिया की जितनी मोहब्बतें बढ़ेगी कि इससे भी मोहब्बत है इससे भी मोहब्बत है, उतना ही अल्लाह तबारक ताला से ताल्लुक में कमी आएगी। अलबत्ता जो हुकूकुल इबाद है वो बेशक अदा करने में उनमें कोताही नहीं करनी है, हुकूकुल इबाद में, लेकिन बिला वजह ताल्लुकात नहीं बढ़ाना चाहिए, उसी का नाम तकलील इख्तलात माल अनाम है। बहरहाल ये मुजाहदात इसलिए कराए जाते हैं ताकि हमारे नफ्स काबू में आ जाए और नाजायज कामों पर उकसाना छोड़ दे, इसलिए मुजाहदात हर इंसान को करने चाहिए, और बेहतर यह है कि मुजाहदात किसी रहनुमा की निगरानी में, डॉक्टर की निगरानी में करे, खुद अपनी मर्जी और अपने फैसले से न करे। इसलिए कि अगर इंसान खुद से फैसला करेगा कि मैं कितना खाऊं कितना न खाऊं, कितना सोऊं, कितने लोगों से ताल्लुकात रखूं, किन लोगों से ताल्लुकात न रखूं, तो उसमें बेएतदाली हो सकती है। लेकिन जब किसी रहनुमा की रहनुमाई में काम करेगा तो इंशाल्लाह उसके फवाइद हासिल होंगे और हर काम एतदाल में रहकर होता रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये जो मुजाहदा थे वो कम खाना, कम बोलना, कम सोना और कम लोगों से मिलना, उस पर था। वो हजरत की एक बात थी, उसका तफसील था। अब आगे हजरत की दूसरी बात है। हजरत वाला ने इरशाद फरमाया कि मुजाहदा अब आया है इख्तियारिया और इस्तिरारिया। भाई मुजाहदा की एक किस्म, एक मुजाहदा होता है इख्तियारिया और एक मुजाहदा इस्तिरारिया। ये लफ्ज को जरा याद रखना, उससे बहुत सारे काम और बहुत सारे वसाविस दूर हो जाएंगे। मुजाहदा इख्तियारिया में तो फैल का गलबा है, आगे इसका सब समझ में आ जाएगा, इसलिए इसमें अनवार ज्यादा होते हैं, समझे। मुजाहदा इख्तियारिया में तो फैल का गलबा है, इसलिए उसमें अनवार ज्यादा होते हैं, क्योंकि अनवार का तरतुब अमल पर होता है। और मुजाहदा इस्तिरारिया में फैल कम होता है, इसलिए इसलिए उसमें नुरानियत कम होती है, लेकिन इन्फियाल का गलबा होता है। जी, इज़्तिरारिया। तो ज़ुआत से है, तो इसलिए उसमें लेकिन इन्फियाल का गलबा, इसलिए काबिलियत में कुव्वत बढ़ती है, काबिलियत में कुव्वत बढ़ती है। और इस इन्फियाल और काबिलियत की खुद आमाल इख्तियारे के रासिख होने के लिए सख्त जरूरत। इन्फियाल और काबिलियत की खुद आमाल इख्तियारे के रासिख होने के लिए सख्त जरूरत है, इसीलिए बुजुर्गों ने ऐसे मुजाहदात बहुत ज्यादा कराए हैं। ये तो हजरत की बात थी, अब उसको जरा समझो। जैसा कि कल अर्ज किया था कि मुजाहदा के माना है नफ्स की मुखालिफत करना, बताया था ना, नफ्स की मुखालिफत करना, नफ्स के तकाजों को अल्लाह के लिए कुचलना। इस मलफूज में हजरत वाला मुजाहदा की दो किस्में बयान फरमा रहे हैं, मुजाहदा की दो किस्में बयान फरमा, एक मुजाहदा इख्तियारी, दूसरा मुजाहदा इस्तिरारी, इज्तिरारी। अब समझो जरा, मुजाहदा इख्तियारी यह है कि जब किसी तालिब ने किसी शेख की तरफ अपनी इसलाह के लिए रुजू किया तो उस शेख ने उस बात की जरूरत महसूस की कि इस तालिब को फुला किस्म का मुजाहदा कराना चाहिए, चुनांचे वो शेख उस तालिब को उस काम में लगा देता है। जैसे शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के बेटे का किस्सा है कि जब वो अपनी इसलाह के लिए अपने बाप की एक इजाजत याफ्ता शेख के पास पहुंचे तो उन्होंने उनको हम्माम झोंकने पर लगा दिया। हम्माम, हम्माम यानी गुसलखाने, पहले वो उसमें गरम करते थे लकड़ियां लगाकर, तो उसको झोंकने में, उसको गरम करने में लगा दिया। अब वो हम्माम की आग जलाकर नमाजियों के लिए पानी गरम कर रहे हैं। यह मुजाहदा इख्तियारी था, इसलिए कि इनका हम्माम झोंकना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन शेख ने उनको इस काम पर लगा दिया। या मसलन किसी शेख ने किसी तालिब से यह कहा दिया कि तुम रोजाना 100 रकात नफल पढ़ा करो, तो ये मुजाहदा इख्तियारी है, क्योंकि अपने इख्तियार से शेख वो काम उस तालिब से ले रहे हैं। इख्तियारी का मानी कोई शेख जो है वो मुरीद को या कोई दीनदार आदमी किसी को समझ करके भाई तुम ऐसा करो, तो अब वो उस मुजाहदे में लग जाता है, तो ये मुजाहदा इख्तियारी होता है। शेख है कामिल, किसी को जैसे बताया, किसी को किस काम पे, इससे पहले भी किससे गुजरे हैं ना, किसी को ऐलान पर लगा दिया कि जो मुझे एक मुक्का मारेगा मैं उसको 1 अखरोट दूंगा, किसी को ऐलान पर लगा दिया कि भाइयों मेरे अंदर तकब्बुर ज्यादा है, दुआ करो कि मेरा तकब्बुर निकल जाए। तो ये सारा क्या, ये सब ये भी मुजाहदा, ये मुजाहदा इख्तियारी है। अब समझ गए, जितना पिछला जो गया वो सारी मिसालें समझ लो। अब मुजाहदा इस्तेरारी, दूसरा मुजाहदा इस्तेरारी होता है जिसमें इंसान के अपने इख्तियार और इरादे को दखल नहीं होता, उसमें अपना इरादा और अपना कुछ फैल कोई दखल नहीं, लेकिन गैर इख्तियारी तौर पर हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से इंसान को अपने नफ्स की मुखालिफत करनी पड़ती है। इसको कहते हैं हालात। यूं यूं नाम रखो कि इस्तेरारिया माना हालात। हालात अल्लाह की तरफ से आते हैं ना। अब जब अल्लाह की तरफ से हालात आए तो अब वो उसमें इंसान मजबूर है, इस्तेरार कहते हैं मजबूर, उसको करना ही करना है। हाँ, कोई ना कोई हालात आ गए, कोई माल की कमी आ गई, कोई जिल्लत आ गई, किसी के सामने झुकना पड़ा। हाँ, तो इसको कहते हैं मजबूर। तो वो हालात ऐसे पैदा हो जाते जिसकी वजह से इंसान को अपने नफ्स की मुखालिफत करना पड़ती है, या उसको कोई तकलीफ या कोई सदमा वाली बात पेश आ जाती है, या किसी बात का गम लाइक हो जाता है। ये हालात होते, गम लाइक हो जाता है, ये सब मुजाहदा इस्तेरारिया है। इस्तेरारी का माना है मजबूरी, इस्तेरारिया, मुजाहदा इस्तेरारी, यानी जिसमें इंसान मजबूर है और वो हालात जो अल्लाह की तरफ से आते हैं उसके अंदर। अब इंसान की जैसे बताया कि कोई गम आ गया, अब वो कुछ नहीं कर सकता, उसको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। एक तो शेख ने बताया कि ये काम तुम्हें ऐसा करना है, तो वो मुजाहदा इख्तियारी है, किसी के कहने पर कर रहा है, और उसमें भी वो चाहे तो न करे, वो चाहे तो करे, इसको इख्तियारी कहते हैं। और एक इस्तेरारी है जो मजबूर है, जिसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है कि नहीं करना, करना ही करना है कोई ऑप्शन भाई, कोई गम आ गया तो अब वो गम तो उठाना ही उठाना है, बीमारी आ गई तो अब वो बीमारी बर्दाश्त करनी ही करनी है, उसमें है ही नहीं कि तुम न करो। आप समझे, आएगी मिसाल अभी। तो ये इस्तेरार का माना बताया, ये बताया कि फरमाया किसी पर गम लाई हो, ये सब मुजाहदा इस्तेरार। मसलन किसी करीब अजीज का इंतकाल हो गया और उसकी वजह से सदमा हुआ, अब उसमें भी नफ्स की मुखालिफत हुई, उसमें भी नफ्स की मुखालिफत, इसलिए कि नफ्स तो ये चाह रहा था कि वो मजीद जिंदा रहता जो रिश्तेदार थे, लेकिन उसका इंतकाल हो गया, वो मजबूर है, तो ये मुजाहदा इस्तेरारी है। अब तुम उसको जिंदा नहीं रख सकते, अब तुम्हें उस पर नफ्स की मुखालिफत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तुम चाहते थे ये जिंदा रहे और वो जिंदा न रहा, उस पर तुम्हें तकलीफ पहुंची, इसको इख्तियार करना, तो ये मुजाहदा इस्तेरारी है। या नफ्स तो चाह रहा था कि सेहत और तंदुरुस्ती बरकरार रहे, कोई बीमारी ना आए, लेकिन बीमारी लाहिक हो गई जिसकी वजह से तकलीफ पहुंची, ये मुजाहदा इस्तेरारी है। जी, इसका माना है सब्र करना, बस इसलिए फरमाया हालात पर सब्र करो, हालात पर सब्र करो, इसलिए सब्र का जो लफ्ज है ना वो सारे के सारे हालात पर और मुजाहदा इस्तेरारी पर है, क्योंकि उस पर कुछ नहीं। अगर बेसब्री करेगा, हालात तो दुरुस्त होने वाले नहीं है, वो जब लिखा होगा उस वक्त जाएगा, लेकिन बेसब्री से नुकसान ही होगा कि अजर से महरूम हो जाएगा, और सब्र करेगा तो उसको अजर पूरा पूरा मिलेगा, बेसब्री न करे, क्योंकि वो आने वाले हालात है, वो आ गए, उस पर झगड़ा न करे, उस पर बदगुमानी न करे, उस पर किसी की तरफ उंगली न उठाए, इसकी वजह से उसकी वजह से नहीं, नहीं अल्लाह की तरफ से आए। तो ये है बहरहाल, एक मुजाहदा वो है जो इंसान अपने इख्तियार से अंजाम देता है, उसके सामने दो रास्ते खुले होते हैं, चाहे वो उस अमल को करे चाहे न करे, ये मुजाहदा इख्तियारी है। और दूसरा मुजाहदा वो है जो अपने इख्तियार से नहीं होता, बल्कि हालात ऐसे आ जाते हैं कि उनकी वजह से इंसान को गम तकलीफ सदमा पहुंचता है, ये मुजाहदा इस्तेरारी है। अब समझ में आ गई बात भाई? इख्तियारी और इज़तिरारी, ये दो याद रखना, इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। मुजाहदा इख्तियारी अपनी मर्जी से न करे, उसमें तो ऑप्शन है ना, एक ऑप्शन वाला एक बगैर ऑप्शन के। अलबत्ता ये मुजाहदा इख्तियारी खुद अपनी राय से और अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए। मुजाहदा इख्तियारी जो है ना, उसमें किसी के ताबे होकर करे, जैसे पिछले किस्से बताए कि शेख ने बताया है बस उसके मुताबिक करें। और उसमें अगर अपनी मर्जी से, जैसे किसी को बताया मस्जिद में जूते सीधे करो, अब उसने देखा कि इससे तो तवाजु आती है, लाओ मैं भी सीधा कर दूं, तो वो सीधा करने जाएगा तो उसको बीमारी का इलाज नहीं होगा, बीमारी और बढ़ेगी। इसलिए मुजाहदा इख्तियारी अपनी मर्जी से देखा देखी न करे, बल्कि वो डॉक्टर के पास जाए और उसके पास जाकर उसको हालात बताकर और उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक करें। मसलन आपने वास के अंदर ये सुन लिया कि मुजाहदा जरूर करना चाहिए, आपने सुन लिया, जैसे अभी भी चल रहे 2-3 दिन से, तो सुन लिया कि मुजाहदा जरूर करना चाहिए और नफ्स को कुचलना चाहिए। चुनांचे खुद अपनी राय से तजवीज कर लिया कि मैं फुला मुजाहदा करूंगा। याद रखिए, याद रखिए कि अपनी मर्जी से मुजाहदा करने से और ज्यादा खराबी का अंदेशा है, बढ़ सकती है बीमारी। इसलिए मुजाहदा इख्तियारी हमेशा अपने शेख की निगरानी और उसके हुक्म के मुताबिक करना जरूरी है। मुजाहदा इख्तियारिया हमेशा अपने शेख की निगरानी और उसके हुक्म के मुताबिक करना जरूरी है, अपनी तरफ से न करें। हमारे दारुल उलूम में भी एक मरतबा बाज तलबा ने अपनी मर्जी से मुजाहदा करना शुरू कर दिया। किसी ने यह मुजाहदा इख्तियार कर लिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुजाहदे की बात सुनी, बोले अब नहीं खाना है। किसी ने इख्तियार कर लिया कि मैं सिर्फ एक खजूर से इफ्तार करूंगा। इस तरह के मुजाहदात करने शुरू कर दिए। उसका नतीजा यह हुआ कि फायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान हुआ। लिहाजा मुजाहदा बाद से लोग कहते हैं कि बस अब तो रात में सोना नहीं है, बस 2-3 घंटे सोएंगे बाकी, तो देखो ये मुजाहदा खुद ब खुद कर लिया है। नहीं, हमें 6 घंटे की नींद अच्छी लेनी है। हाँ, तो फरमा इस तरह के मुजाहदात करने शुरू कर दिए। इसका नतीजा हुआ कि फायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान हुआ। लिहाजा मुजाहदा इख्तियारिया हमेशा किसी शेख की निगरानी में करना चाहिए, यानी खुद ब खुद करना। एक मुजाहदा इख्तियारिया वो शेख की निगरानी में करना है, मुजाहदा इस्तेरारी ये अल्लाह की तरफ से आ जाता है हालात में, मुसीबत। अब मुजाहदा इख्तियारी में नूरानियत ज्यादा होती है, ये लफ्ज आया था ना। बहरहाल मुजाहदा इख्तियारिया में, इख्तियारिया हो या इस्तेरारिया, दोनों से तरक्की होती है, दोनों से तरक्की होती है, दोनों के जरिए तालिब अल्लाह ताला की रजा की मंजिल के करीब पहुंच जाता है। अलबत्ता देखो, यानी ये मुजाहदा जो होता है ना, यूं समझो जो आज की साइंस की जबान में ये ऑपरेशन है, अगर ये ऑपरेशन हो जाते हैं, अल्लाह ताला कभी तो डायरेक्ट करता है और कभी शेख के रास्ते से भी होता है। शेख के रास्ते से चल रहा होता है, उसके बावजूद भी अल्लाह की तरफ से होता है, और उसके जरिए से आखिरत की मंजिल जल्दी तय करता है। इसको हम अगर सादा जबान में समझने चाहो तो ऑपरेशन है। जो हालात और मुजाहदा बर्दाश्त करता ही नहीं है तो उसका बिगाड़ बढ़ रहा है, बगैर ऑपरेशन के वो जा ही नहीं सकता। बिगाड़ को निकालने के लिए जैसे जिस्म के अंदर के बिगाड़ को ऑपरेशन के निकालते हैं, ऐसे ही हमारे दिल के बिगाड़ को उसके लिए मुजाहदा का ऑपरेशन है, उसके जरिए से निकलेगा। अब वो खुद नहीं करना, अब खुद ऑपरेशन करेगा तो क्या होगा भाई? ये तो ऐसा हुआ कि पैर में फुंसी हो गई थी, उसने कहा अंदर मवाद है, कहां मैं जाऊंगा डॉक्टर के, लाओ मैं खुद ही ब्लड मार कर निकाल देता हूं और उसको सी दूंगा, कुछ लगा दूंगा तो हो जाएगा काम। जी नहीं होगा, बल्कि उसके उसके माहिर के पास जाना पड़ता है। तो ऐसा ही हुआ कि हम भी चाहते कि मेरे अंदर भी गुनाह का बिगाड़ है, मैं उसको ऑपरेशन कर लेता हूँ, चलो मुजाहदा कर लेता हूँ, क्या है उसमें, मुझे बहुत आसान है, हमने तो बयानत में बहुत सुना है और बुजुर्गों के किस्से भी है, मस्जिद में चढ़ के ऐलान कर दिया भाई मेरे अंदर तकब्बुर है, चलो मुजाहदा निकल जाए, जूते सीधे कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि बाकायदा इलाज कराना है। फरमाया तो अल्लाह ताला के करीब पहुंचता है। अलबत्ता इस मलफूज में हजरत वाला ने दोनों मुजाहिदों का फर्क बयान फरमाया, दोनों मुजाहिदों का फर्क बयान फरमाया कि मुजाहिदा इख्तियारिया, चूंकि इंसान अपने फैल और अपने इख्तियार से अंजाम देता है, मुजाहिदा इख्तियारिया उसमें इंसान अपने फैल और खुद उसको अंजाम देता है, यानी इख्तियारिया में करने की भी सलाहियत है न करने की भी सलाहियत है। तो अब जाहिर बात है मुजाहिदा क्यों हुआ कि न करे तो भी, लेकिन उसने न करने के ऑप्शन को छोड़ दिया और कर लिया है, बड़ों की बात को मान लिया है, तो ये मुजाहदा है, इसमें नुरानी ज्यादा है। वो भी कर सकता था, कौन उसको डांटने वाला था, कौन उसको बोलने वाला था, कौन उसको पकड़ने वाला था, कोई नहीं था, लेकिन उसने अपने नफ्स पर काबू में रखकर बड़ों की बात को सुन लिया है। तो फरमाया अल्लाह, और अपने इख्तियार के जरिए अल्लाह ताला की खातिर अपने नफ्स को कुचलता है, इस वजह से इस मुजाहदे में नूरानियत ज्यादा महसूस होती है, मजबूर नहीं है, नूरानियत ज्यादा महसूस होती है, अनवार ज्यादा महसूस होते हैं। और मुजाहदा इस्तिरारिया में उसने अपने इख्तियार से कुछ नहीं किया था, बल्कि अल्लाह ताला की तकदीर से खुद ब खुद हालात ऐसे पैदा हो गए कि उसकी वजह से उसको सदमा और तकलीफ और गम पहुंचा, इसलिए उस मुजाहदा में जाहिर एतबार से नूरानियत कम होती। देखा, नूरानियत में फर्क होता। इसलिए फरमाया जब इंसान अपनी इसलाह किसी कामिल शेख से कराएगा तो उसमें जल्दी तरक्की है, याद रखो, और अगर वो इसलाह नहीं करा, जैसे आम पब्लिक है जो नहीं करा रही है, तो अल्लाह ताला उनके ऊपर हालात को डालते हैं, हालांकि उनकी भी इसलाह अल्लाह ताला कर रहे हैं हालात के जरिए से, कभी माल की कभी, कभी औलाद की कभी, कभी बीमारी कभी क्या, उसके बावजूद भी अगर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाता है तो फायदा हो जाता है, लेकिन अगर इंसान अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं होता है तो फिर और ज्यादा फंसता जाता है। तो अल्लाह ताला जो हालात डालते हैं मोमिन के ऊपर, वो उसकी इसलाह के लिए डालते हैं कि बंदा मेरी तरफ आ जा। इसलिए खुद जो इसलाह कराएगा उसमें फायदा ज्यादा है, उसमें नूरानी ज्यादा है, उसमें तरक्की जल्दी है, क्योंकि उसमें रहबर साथ में है ना, तो रहबर हमें लेकर चल रहा होता है, और हालात जो आते हैं अल्लाह की तरफ से वो तो सब पर आते हैं। देखो आज के इतने हालात है कि भाई हर जगह महंगाई बढ़ रही है, हर जगह हालात बुरे हो रहे हैं, लेकिन लोगों को देखो कौन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो रहा है, क्या हालात नहीं, और हालात बर्दाश्त करते भी जा रहे हैं, हर चीज चल रहा है, तुम क्या कर सकते हो, कहीं हुकूमत की तरफ से हालात है तुम्हें बर्दाश्त करना है, लेकिन उसके बर्दाश्त करने के बावजूद भी तरक्की इतनी नहीं हो रही है, क्यों, कि इसलिए कि ये तो मजबूर है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे अब भी नहीं हुए हैं, तो फिर तरक्की नहीं होती। तो फरमाया सदमा तकलीफ और गम पहुंचा, इसलिए उस मुजाहदे में जाहिर एतबार से नूरानियत कम होती है, क्योंकि नूरानियत के नतीजे में इंसान की तबीयत में इनशरा और इनबिसात होता है, सुकून होता है, जबकि मुजाहदा इस्तिरारिया में तो सदमा और तकलीफ होती है, इसलिए इस मुजाहदे में इस किस्म की नूरानियत तो हासिल नहीं होती। इसलिए देखो उसमें जब किसी की इताअत में लग गए और काम करते हैं तो दिल पर तो आरे चले, लेकिन बाद में सुकून मिलता है। मुजाहदा इस्तिरारिया में भी नफ्स पर आरे तो चले, लेकिन सुकून नहीं मिल रहा है, नूरानियत है लेकिन कम है, इसमें भी आपको एक रहबर मिल जाएगा तो थोड़ा सा ये हमें अल्लाह की तरफ मुतवज्जे कर देते हालात। इसलिए फरमाया हालात आ जावे तो भी अल्लाह वालों की तरफ मुतवज्जे हो, और हालात नहीं है फिर भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, दोनों हालत में अल्लाह वालों की तरफ मुतवज्जे होने से फायदा होगा। अब मुजाहदा इस्तिरारिया से एक फायदा क्या है, काबिलियत पैदा होती है, काबिलियत, लेकिन चूंकि मुजाहदा अल्लाह ताला की तरफ से होता है, इस वजह से इस मुजाहदे के नतीजे में इंसान के अंदर काबिलियत ज्यादा पैदा हो, क्यों कहते हैं एबिलिटी, काबिलियत ज्यादा पैदा होती, और अल्लाह ताला उसके जरिए अच्छे आमाल की काबिलियत पैदा फरमा देते हैं। इसकी वजह हजरत वाला ने यह बयान फरमाई कि मुजाहदा इख्तियारिया के अंदर फैल है और मुजाहदा इस्तेरारिया के अंदर इनफियाल है। इनफियाल का मतलब यह है कि इसके अंदर अल्लाह ताला के फैल को दखल है, اللہ تعالیٰ کے فعل کو دخل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فعل کا انفعال اور اثر ہے، اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، اور انفعال یعنی اس کا اثر ہے بندے کے اندر، اور انفعال کے نتیجے میں اس کے اندر قابلیت زیادہ پیدا ہو جاتی. البتہ دونوں مجاہدے فائدے سے خالی نہیں. مجاہدہ استراری میں جی ترقی تیزی سے ہوتی ہے، ترقی تیزی سے ہوتی ہے. میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یوں تو مجاہدہ اختیاری اور استراری دونوں مفید اور کارآمد ہے، لیکن ترقی جتنی تیزی سے مجاہدہ استراری میں ہوتی ہے، مجاہدہ اختیاری میں نہیں ہوتی. ایسا کیوں کیوں ہے؟ اس لیے کہ مجاہدہ استراری کو تم نے خود اپنی مرضی سے اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ جل شانہ کی تجویز اور اختیار سے ہوا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان حالات سے گزارا، جب تم ان کے حالات پر صبر کیا، دیکھو صبر آیا، جب تم ان کے حالات پر صبر کیا اور ان کو قبول کیا اور ان پر تفویض سے کام لیا، بھائی اللہ کی طرف سے تفویض سے کام لیا، تو اس کے نتیجے میں ترقی بہت تیزی سے ہوتی ہے. البتہ بظاہر دیکھنے میں اس کے اندر نورانیت نظر نہیں آتی، بظاہر اس میں نورانیت نظر نہیں آتی، لیکن تیزی کیوں؟ یہ کون صبر کرے گا جس کا مجاہدہ اختیاریہ میں بھی تھوڑی بہت تعلق ہوگا اور عادت ہوگی، تو پھر اس پر حالات آئیں گے تو اس پر وہ اور صبر کرے گا اور اللہ کو سپورٹ کرے گا، کام چلے گا، تو ترقی بہت جلدی ہوگی. اس لیے کبھی کبھی اللہ تعالی حالات ڈال کر بندے کو اپنا قرب نصیب فرماتے ہے نا، کیوں کہ فرمایا اس کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ اعمال کر کے میرا قرب حاصل کرے، میں نے حالات ڈالا، اس پر صبر کرے گا، اس کو میں قرب دے دوں گا. شارٹ کٹ راستہ. فرض کرے کہ ایک شخص اپنے اختیار سے نوافل پڑھ رہا ہے، ایک شخص اپنے اختیار سے نوافل پڑھ رہا ہے اور مجاہدہ کر رہا ہے اور ساری رات نوافل پڑھتے ہوئے گزار رہا ہے. جب اس نے یہ مجاہدہ کیا تو اس کے نتیجے میں اس کی طبیعت میں انبساط، انشراح اور سرور پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیک کام کی توفیق دی. اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس کو کسی عزیز کے انتقال کی خبر ملی ہو، یا کسی نے اس کو ڈانٹ پلا دی ہو، یا کسی نے اس کو کوئی اور دکھ اور تکلیف پہنچا دی ہو، ایسے شخص کو تکلیف اور صدمہ ہو رہا ہے، مجاہدہ ہوا، تو اس کو اس عمل میں نورانیت اور مزہ کیسے آئے گا؟ تو ظاہری طور پر اس میں اس کو مزہ نہیں آ رہا ہے، اس لیے اس کے اندر توازو زیادہ ہے اور اس کے اندر تکبر کا وہ ہے، کیونکہ انسان کو خوشی ہوگی، ہو سکتا ہے خوشی آگے بڑھ جائے اور وہ حد سے آگے نکل جائے، اور اس کے اندر خوشی کیا ہے تو صدمہ ہی صدمہ ہے، اور صدمے میں خوشی کہاں سے ہوگی؟ تو اس لیے فرمایا کہ ظاہر میں اس میں نورانیت نہیں ہے، کوئی انبساط اور کوئی خوشی نہیں ہے، بلکہ غم ہے کسی کے انتقال پر، مزہ کیسے آئے گا؟ لیکن اللہ جل شان اپنے فعل سے اس کی ترقی فرما رہے، سمجھے بات کو ذرا، کہ اس کے ذریعے سے بظاہر اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے لیکن اس کو ترقی مل رہی ہے. اس لیے ظاہر میں نورانیت کم ہے، حقیقت میں ترقی ہے، اور بجائے اس آدمی کے جس نے 100 نوافل پڑھے، پوری رات پڑھے، تو اس کو مزہ اور خوشی ہوتی ہے، تو وہ انوار اس کو دکھائی دیتے، انوار زیادہ ہے اس کو دکھائی دیتے، ظاہری انوار، لیکن ترقی اس میں اتنی نہیں ہے جتنی اس میں ہے، کیونکہ وہاں پر ہو سکتا ہے ایک بیماری بڑھ جائے، یہاں پر کوئی بیماری کا بڑھنے کا کوئی خدشہ نہیں، توازو ہی توازو ہے، غم ہی غم ہے، غم والا بےچارا کیا کرے گا؟ لیکن اللہ جل شان اپنے فعل سے اس کی ترقی فرما رہے تاکہ وہ کسی طرح اپنی منزل پر پہنچ جائے. اللہ اکبر، کیسا اللہ تعالی بتاتے ہیں. بس یہاں پر رکھو، بہت عجیب، اس کا مذاکرہ کریں تو ایک دو باتوں کو یاد رکھیں، مجاہدہ اختیاریہ اور مجاہدہ استراریہ، اس کا مذاکرہ کریں، اور ایک دوسرے کو میسج بھی بھیجنا ہو تو لکھ کر بھیجیے، یا آپس میں جب بات کرے تو اس کی دعوت دے. ताकि हमारे अंदर भी उतर जाए और हम भी उस पर अमल करने वाले बन जाए। मुराकबा कर लें। आंखों को बंद कर ले, गर्दन को झुका ले और तसव्वुर करे कि मेरे अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से जुल्मत सियाही दूर हो रही है। मेरा दिल कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह